अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयायुः कुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिना अङ्गश्यामलिं छटा विरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुदिरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य बिन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम च गुलिटा च गुरु गौरांग की कृपा से आज हम लोग निधुवन में और निधुवन के बाद में राधा रमन दर्शन मिला कई बजे। उनका तो समय रहता है 9:30 बजे वहां दर्शन हुआ राधा रमन और गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि और भजन दर्शन करके राधा गोपला आनंदी और वहां दर्शन करके फिर आ गए लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि में और फिर वहां से गोपीनाथ और गोपीनाथ से फिर श्याम सुंदर इस बार उल्टा पुल्टा हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कल यहां से जाए और देखो बंगला नहीं हो रहा है शाम को 3-4 बजे परिव्राजक महाराज को दे कह देना तुम्हें उखाने पाठ कर रहे बंगला प्रतिदिन नहीं तो ओरा मने कर भाई जिस समय देखे कुछ बोला हो निधुस निधुवन में गए वहां पर तो भाषण दिया गया न कौन बोला बनारण्य और इनको कहीं बोलने दिया गया भक्ति सार जाए तो उनको भी, इन लोगों को भी समय देना चाहिए सबको। निधु माने सूरत, सूरत क्रीड़ा, निधुमन माने होता है सूरत क्रीड़ा। सूरत क्रीड़ा माने क्या? जो गुप्त लीलाएं हैं, रह लीला, गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों में निधु, निधुमन की सूरत क्रीड़ा का वर्णन। निशांत लीला का स्थान बतलाया जाता है राधा नंदगांव और बरसाना के बीच में, संकेत में, संकेत से मिलते हैं। यहां पर भी वही है, निशांत लीला का स्थान है, है? ये वृंदावन निधुवन, तो निशांत काल में निधुवन में केली कुंज में जुगल का शयन विलास होता है। इनका शयन विलास होता है। अरे माता जी को एक चेयर दे देना कहीं से ढूंढ करके, ओ ब्रह्मचारी यू कैन गिव ए चेयर टू दैट मॉडल। ठीक है, तो नैश लीला भी, निशांत लीला भी। प्रभात जब होने लगता है निशांत, उस समय वृंदा देवी सुख सारी, मयूर, कोकिल, भृंग इत्यादि को आदेश देती हैं कि राधा कृष्ण अभी सो रहे हैं, अयोध्या प्रभात हो रहा है, इसलिए जल्दी से इनको जगाओ और ये लोग अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। रागानुगु भक्त लोग विशेषकर रूपानुग रसिक महानुभाव नाम संकीर्तन के माध्यम से इन लीलाओं का स्मरण करते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहां पर कहा गया था, ये विश्वनाथ स्वप्न विलास की बात, यह यहीं के लीला का वर्णन है कि किसी समय में यहीं पर रात के अंतिम भाग में राधा और कृष्ण जग जाने के बाद में जब उनका मिलन परस्पर हुआ तो विश्वानंदिनी जी ने एक स्वप्न देखा और कृष्ण से वो कह रही है, प्रियतम मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है, देखा है कि मैं जहां पर हूं वहां यमुना की भांति कोई नदी बह रही है, यमुना की भांति, और नदी के तट पर जमला पुलिन की भांति में वहां पर भी पुलिन है, बहुत ही सुंदर मनोहर, और उस उपवन में वृंदावन भांति, वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य और गान करते हुए, विनोद करते हुए अद्भुत गौर कांति विशिष्ट किशोर को देखा, बहुत ही सुंदर, कैसा रंग, राधा जी जैसा रंग, बहुत ही गौर वर्ण का देखा, और भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर से वो नृत्य कर रहा था। क्या हो जाता है, भावाविष्ट किशोर कभी हा कृष्ण कर रहा था और कभी कभी भावाविष्ट होकर हे राधे हे राधे तुम कहां हो, ऐसा कर रहा था। और कभी भूमि पर लौट रहा था भाव अविष्ट होकर, कभी मूर्छित हो रहा था और कभी अपने भावों से सारे जगत को, अपने भावों को उन लोगों में संचरित कर रहा था। सभी लोग प्रभावित हो रहे थे उस प्रेम को देखकर। प्रियतम, मैंने यह देख करके स्वप्न में मैंने सोचा कि ये किशोर कौन है, क्या कभी हा कृष्ण कहने वाली मैं ही तो नहीं हूं, मैं मेरे अतिरिक्त और तो कोई हा कृष्ण कर करके रोता नहीं। अथवा जब वो हा राधे करता है तुम कहां हो, तो ऐसा लगता है कि तुम ही हो, तुम ही मेरे लिए हा राधे राधे कह करके रोते हो, या तो तुम हो। तो मैं कुछ चिंतित हो गई, जो वो कौन है, मैं हूं या तुम हो, और जमुना पुलिन कौन सा है, वो जमुना पुलिन जैसा वो स्थान कौन सा है। कृष्ण बोले, प्रियतमे मैंने समय समय पर तुमको नारायण का रूप दिखलाया है, कहां बैठा इत्यादि में दिखलाया है, देख करके तुमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला वो गौर सुंदर कौन है, गौर वर्ण वाला व्यक्ति कौन है, मैं नहीं कह सकता, ये कह करके वो हंसने लगे। तो राधा जी समझ गई जब हंस रहे हैं तो ये जानते हैं जरूर। फिर राधा जी बोली, ये स्वप्न विलासामृत उनका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, और महाप्रभु के अवतार की सूचना देने वाला है। राधा जी करे, प्राण बल्लभ मैं समझ गई, आपके अतिरिक्त तो वह गौर वर्ण कोई नहीं सकता है, इसलिए वह गौर स्वरूप आप ही हैं, अन्यथा कोई भी मुझे मोहित नहीं कर सकता, किसी की माया नहीं मोहित कर सकती है। अनंतर कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि में राधिका जी को जो सपने में देखा था उसमें दिखलाने लगे। सभी उसी तरह से जैसे सिनेमा में आता है वैसे उस मणि में वो सब लीलाएं देखी उन्होंने। राधिका जी अंत में देख करके बोली, बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था, आने वाले कलयुग के प्रथम संध्या में आपका पुत्र पीतवर्ण होकर के आएगा, गौरांग के रूप में प्रकट हुआ। गर्गाचार्य की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा स्वप्न सत्य है, वह स्वप्न दृष्ट गौर किशोर आप ही है, दूसरा नहीं। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारी गौर कांति और तुम्हारे भीतर के भाव को, भाव माने क्या, मदनक के भाव इत्यादि को लेकर ग्रहण कर, तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए मैं आऊंगा। ये कली के प्रथम संध्या में, साथ ही साथ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा, और यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए मैं सदा महाबदान्य गौरांग रूप में अवतीर्ण होऊंगा, तुम सभी परिकरों के साथ में मेरे साथ में आएगी। निधुवन में राज वेश में सुसज्जित होकर के राधिका राज सिंहासन पर बैठी, सखियों ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया, जैसे उमराव गांव में हुआ लीला, सिंहासन पर बैठाया, और कृष्ण कोतवाल का वेश धारण कर, कोतवाल वेश धारण करके कुंज कुटी के द्वार पर रक्षा करने लगे। इसको कोई राई राज लीला कहते हैं। गौड़ीय पदकर्ताओं ने इस लीला का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया, पदकर्ताओं ने इस लीला को कैसे राधा जी सिंहासन पर बैठी हैं और ये कोतवाल बन करके कुंज की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां गौर अवतार की सूचना हुई। वहां पर एक ललिता कुंड है यहाँ सेवा कुंज में, उसी प्रकार से यहाँ निधुवन में विशाखा कुंड है। विशाखा जी की प्यास को बुझाने के लिए वहां पर ललिता जी को पिपासा करने बेणू से खोदा और यहाँ पर अपने बेणू से कुंड प्रकाश करके उस कुंड के पानी से विशाखा जी की प्यास बुझाई और सखियों की भी। और फिर वहां पर रास हुआ था निधुवन में और रात में वहां पर चीजें रख देने पर कुछ उलट पुलट जाता है, लटफेर हो जाता है। हरिदास ठाकुर जी कौन? निम्बार्क संप्रदाय के स्वामी हरिदास। इस निधुवन के विशाखा कुंड से राधे बांके बिहारी जी ठाकुर जी को प्राप्त किया था। जैसे मदन मोहन को गुमा टीला से रूप गोस्वामी, गोविंद देव को, सनातन गोस्वामी मदन मोहन को, और इन्होंने बांके बिहारी ठाकुर को वहां से प्रकट किया। बहुत ही सुंदर गायन करते थे। एक बार महाराज अकबर, सम्राट अकबर, वेश बदल कर तानसेन के साथ में आया और उनका संगीत सुनने की इच्छा की। तानसेन ने उनको मना कर, तुम मत करना, हम व्यवस्था करा देंगे, उनका कीर्तन तुम सुनेगा। वो किसी मनुष्य को नहीं सुनाते थे, वो केवल अपने इष्ट देव को सुनाते थे। तानसेन वीणा लेकर के गायन करने लगा, बड़े सुंदर। सम्राट अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु हरिदास ने क्या गा रहा है गड़बड़, और उन्होंने वीणा ले ली। और जब गाया, बन के हिरण और ये सब वहां पर उपस्थित हो गए और जब उन्होंने बंद कर दिया तो चले गए। महाराज सम्राट अकबर ने उनको कुछ देना चाहा, खबरदार मत देना, फिर उनको मना कर दिया, तुम यहां की इनकी कोई सेवा नहीं कर सकता। इस तरह से यहां का ये विषय है। इसके बाद में आप लोग राधा श्याम सुंदर में नहीं गया? अच्छा, फिर कल जाना सब। मैं भी आऊंगा कहीं। फिर आप लोग कहाँ गए? राधा रमण जी में आप लोग जानते हैं कि कैसे वो शालग्राम शिला से उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रमण में प्रकटित हुए। इन राधा रमण जी में तीन विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, तीन। किसी का पैर है, किसी का वस्त्रचल है, किसी का मुखारविंद है। बतलाया था रसानंद। तो ये सब विचित्र बातें हैं। वहीं पर वो भजन करते थे, उनकी भजन कुटी और समाधि भी है। और इसके बाद में हाँ, सभी ठाकुर लोग चले गए, गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा वल्लभ सब चले गए जयपुर में। और फिर जयपुर से श्रीनाथ द्वार, कहाँ कहाँ, करौली, ये सब गए, किंतु राधा रमण जी नहीं गए। मंदिर जैसा बना नहीं है और उनको गुप्त रूप में कहीं रख दिया, इसलिए वो मुसलमान लोग उनको, औरंगजेब उनको देख नहीं सका। इसके बाद आप लोग गए वहां, महाप्रभु जी का मंदिर भी है, वहां से आप लोग गए गोकुलानंद जी। गोकुलानंद जी नहीं है यहाँ, उनका भी विजय विग्रह ही है। तभी पृथ्वी उपग्रह को कम मत समझना, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी की शिला और गुंजा माला थी उसी मंदिर में, अभी भी दिखलाते हैं, अभी भी दिखलाते हैं। कोई कहते हैं कि कहीं और चलिए, भागवत निवास वहां है, वन महाराज जी के हाँ वहां चली गई। और वहीं पर लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियां हैं। वो हम स्थान हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है, वे लोग सभी कृपा करें। गोपीनाथ मंदिर में एक विशेष बात शायद बतलाया होगा, उनके दक्षिण भाग में बाएं भाग में जाह्नवा जी हैं, बतलाया था वहां। जाह्नवा जी हैं और दाहिने तरफ में राधा जी की एक छोटी मूर्ति और राधा जी स्वयं हैं। जाह्नवा देवी जब दर्शन करने आई तो अकेले उनको देखा, गोपीनाथ जी को। जब अप्रकट होने लगी तो अपने शिष्य से कहा, ये मेरी विग्रह है, ये वहां पर छोटी है, इस विग्रह को ले जाना और उस मंदिर में प्रतिष्ठा कर देना। ये कह करके अप्रकट हो गई, उनके शिष्यों ने वही मूर्ति जाह्नवा जी की ले आई। जब मंदिर में देने लगी तो उन लोगों ने, पुजारियों ने मना कर दिया। रात में स्वप्न हुआ, ये अनंग मंजरी हैं, इनको हमारे बाएं तरफ में बैठाओ और पहले वाली प्राचीन जो छोटी मूर्ति है और राधा जी का जो मूर्ति है वो उधर में रहे। मूर्तियां अपने आप ये सब बोलती हैं और इस प्रकार से सेवाएं ग्रहण करती हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्य है जी इनका दर्शन किया। एक्सप्लेन कर दो।
Srila Gurudev explained that by the causeless mercy of Guru and Gauranga, today, as we are performing Brajmandal Parikrama, Vrindavan Parikrama, we had the good fortune to visit Nidugan, Sri Radha Ramanji, Gopal Gata Goswami's Samadhi Mandir and Vajan Kuchir, Sri Radha Gokulananda Mandir and the Samadhi of Srila Narottama Das Thakur, Lokanath Das Goswami and Srila Vishwanatha Thakur, and finally Gopinath Mandir. So first of all, went to Nidhuvan. What does Nidhuvan mean? Nidhuvan means Surata Krida, the amorous pastimes of Radha and Krishna. This is called Raha Lila, Gupta Lila, a very secret, confidential, amorous pastime. Such pastimes have been described by Srila Krishna Kaviraj Goswami Pad in his Govinda Lila Amrita, and by Srila Vishwanatha Thakur in his Krishna Bhavan Amrita, and in other very confidential shastras. So we know that between Nandagam and Varsana there is a place called Sanket. the speciality of these places, it is a setting of Radha Krishna's Nishanta Lila. But here, Nituvan, this is the place of Naisha Lila, means nighttime pastimes, and also Nishanta Lila, both. During Nishanta Lila, that means the last portion of the night, Vrinda Devi, she gives an order to the male and female parrots, to the peacocks, and to the cuckoos, that they should sing. And by their sweet singing, they should quickly awaken Radha and Krishna, who are still sleeping, so that they can return to their homes without being discovered. So those who are Rasik and Rupanuga, they always remember this Ashtakali Lila of Radha and Krishna through the medium of Naam Sankirtan. Srila Vishwanatha Thakur Thakur has described a pastime in his book, Sri Swapna Vilasamrita. This pastime took place there in Nidhuvan. Once it happened that in the very last part of the night, Sri Vrishabhanandini had a dream. When she woke up, she said to Krishna, "O Priyatam, my dearest one, I have just had the most astonishing dream. I saw that there was a very beautiful river. It was like Jamuna, but not Jamuna. And there, along the bank of that river, there were beautiful kunjas and upavan, small forests, just like Vrindavan, but it was not Vrindavan. And there I saw one, a very beautiful golden kishore, a golden youth. And he was singing, weeping. He was absorbed in bhav, transcendental emotion. And devotees were playing mridanga and karta. Sometimes he would weep. Sometimes he would become stunned. Sometimes he would faint and roll around on the earth. When he would call out, 'Ha Krishna, Ha Krishna,' then I looked at him and thought, 'Who is that person? Is it me?' Calling out the name of Krishna with so much affection. And sometimes he would call out, 'Hey Radhe, Hey Radhe.' And at that time, I became confused and thought, 'Krishna, is that you? And what kind, is it me or is it you? And what kind of place was that?' This golden youth was doing kirtan in such a way that everyone became completely infused with his transcendental emotions. So Radhika asked, 'Is it me? Is it you? What place is this?' Sri Krishna replied, 'Oh, before I showed you my form of Narayan in places like Paitagam and Sheshai, and you were not surprised. But this form, oh, I cannot say.' And Krishna began to just smile. Then Radhika said, 'I know that no one can bewilder me. Only one person can bewilder me in this way, and that is you. So it must be you.' So Radhika said, once Garga Muni, he came to Nanda Maharaj and he said, 'Asangvanastrayasya,' oh, your son, he appears in different ages in different colors. So I think that my dream was not false. This must be you." So then Krishna, he explained, "Oh, in the very first part, the first portion of Kali Yuga, I will appear with your complexion in order to taste your mood through Naam Sankirtanam, and I will preach Raganuga Bhakti." So this pastime of Radha and Krishna gives an indication of the imminent descent of Sri Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Here in Nidhuvan, there is also a throne. There's a very sweet pastime there where the Sakis of Radhika, they decorate her as an empress, as a great queen, and sit her upon the throne here. And then Krishna, he has to dress as Kotwa. Chief of police?
Like a god.
God. He takes the position of God.
God.
It says police officer.
Constable.
Police officer.
Not chief of police, police constable, lower position.
Not constable, Kotwal. Master of police.
Chief of police.
That is, he was guard on the gate. Anyone cannot come here.
So Krishna, he had to take the position, low position of service to Radhika, standing on the gate to the Kunj and protecting her. So this sweet pastime took place in Niduvan. In Seva Kunj, there is one Kunj, that is Lalita Kunj. But in Niduvan, there is Vishakha Kunj. Once when Vishakha Sakhi was thirsty, then Krishna, to satisfy her thirst, took his flute and excavated this Kunj. Very close to Vishakha Kunj is the Prakatstali, or the place of manifestation of Sri Banki Bihari, who manifested to his dear devotee, Swami Haridas of the Nimbarka Sampradaya. Just as Sri Govinda Dev revealed himself to Sri Rupa Goswami at Gomatila, and as Madan Mohan revealed himself to Srila Sanatana Goswami, so Banki Bihari was the eternal form of Banki Bihari, was discovered there by Swami Haridas. Swami Haridas used to sing kirtan in a very astonishing way, and Emperor Akbar wanted to hear his kirtan. But his disciple Tansen told Akbar that actually Haridas, he will not do kirtan, he will not sing for any human being, he will only sing for his Ishtadev. So when Haridas used to sing, then even the deer, they would give up their shyness and come out from the forest. And when he would stop singing, the mesmerism was over and the deer would run away. So the king, he wanted to give a reward to Haridas, but he would never accept anything. Today we visited, see, Radharaman, this deity of Krishna was manifest from Shalagram Shila, worshipped by Sri Gopal Bhakta Goswami. It's understood that one who's taken darshan of Radharaman, then he's had the darshan of all three prominent deities, Sambandha, Abhideya and Prayojan, Sri Madan Mohan, Govinda and Gopinath. All the deities, most of the deities of Vrindavan, because of the attacks of Muslims, they left for Jaipur. Or Gopalji is in Nathdwar, Madan Mohan is in Karoli. But Radharamanju was hidden by his pujari and he stayed here in Vrindavan. Afterwards, we went to the temple of Radha Gokulananda. The deities there are the Vijay Vigraha of Radha Gokulananda, Pratibhu Murti, the representatives of the original. Srila Gurudev said, one should never think that the Pratibhu Murti, the representative of the original deity, is anything less than the original deity. So there is also the Govardhan Shila and Gunjamala given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Raghunath Das Goswami. Afterwards, we went to Gopinath Mandir. One very special pastime took place in this Mandir. Once, Janaka Thakurani, she came and she had the darshan of Gopinath here. And then she went away. After she became apricot, her pastimes were unmanifest in
this
world.
She saw there that the deity of Radhika is very small. So she made a statue, bigger one.
And then disappeared, then disciple came.
And at the time of disappearance, she made her own statue.
Her disciple.
And also a bigger one, Radhika. And sent it to temple. And then.
So prior to her disappearance, she made a bigger of herself, smaller, and another one bigger of Srimati Radhika.
No. Both bigger.
Both bigger than who?
Radhika, at first when he went to see Gopinath, she saw that the deity of Radhika is too small. So she wanted to make it bigger one. She said she made it and also made a statue of herself and sent.
So when she disappeared, then her disciple, came to Vrindavan and bought there a Vigraha, large Vigraha of Radhika and also a murti of herself. So when she bought these deities, then the pujari of Gopinath had a dream. And so the pujari refused to accept the deities, and in a dream Gopinath came to the pujari and told him that you should, this one deity is Anangamanjari and the other deity is Radhika.
She is Anangamanjari herself. So keep it in my left side. And that bigger statue and a smaller statue of Radhika should be kept in right.
Two forms of Radhika.
Yes.
Larger and smaller.
Thank you. We are hearing all these things. हम लोग सोच सुन रहे हैं किंतु नीचे की बात नहीं सुनना चाहते, कुछ साधन भजन की भी बात सुनो। यदि